का था, रूप वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं रविंद्र कालिया के द्वारा लिखी गई कहानी 9 साल छोटी पत्नी। कुशल दबे पांव इस तरह घर में घुसा था जैसे घर उसका अपना ना हो, और खांसी आने पर वह गली में जाकर इस तरह जी भर खांस आया था जैसे मदन को नसीहत करने का मौका ना देने के लिए वह प्रायः दुकान के बाहर जाकर खांसा करता है। फिर उसने सोचा कि वह शायद अपने अचानक आ जाने से तृप्ता को चौंकाना चाहता है। ये सोचकर वह मुस्कुरा दिया कि चौंकाने के लिए ये छोटी छोटी बातें ही रह गई हैं। तृप्ता ने कुशल को देखा तो सचमुच ही चौंक गई। उसने कुशल को देखते ही कागजों को वह पुलिंदा ट्रंक के पीछे छिपा दिया, जिसे वह दीवार से पीठ टिकाए फुसफुसा कर बड़ी एकाग्रता से पढ़ रही थी। उसकी आवाज के उतार चढ़ाव को भी लक्षित किया जा सकता था। उसने हाल में ही धोए हुए बालों को जूड़े के रूप में इकट्ठा करके उन पर अपना सर इस ढंग से रखा हुआ था जैसे बालों से तकिए का काम ले रही हो। कुशल को देखते ही उसके माथे पर ढेर सारा पसीना इकट्ठा हो गया और वह खड़ी हो गई। उसके बाल खुलकर कंधों पर बिखर गए। उसने कार्निश से लाल रंग का रिबन उठाया और बाल बांधने लगी। कुशल ने खाट पर बैठकर अपने जूते उतारे और बोला, आज मदन दिल्ली गया है और मैं उठाया। तृप्ता की कमीज पसीने से देह पर चिपकती जा रही थी और गर्दन से पसीने की कतरे छूकर कॉलर बोन पर ऐसे रेंग रही थी जैसे मेह के बाद बिजली के तारों पर पानी रेंगता है। उसने कमीज के पल्लू से मुंह पोछा और बोली, आज तो बहुत गर्मी है। फिर उसने ट्रंक को खाट के नीचे सरकाते हुए कहा, मैं तो समझी थी प्रकाश खाने लेने आया होगा, आप इस समय कैसे आ गए? फिर उसने कुशल के चेहरे की ओर देखते हुए पूछा, तबीयत तो ठीक है? कुशल सोचने लगा कि यदि वह तृप्ता के स्थान पर होता तो इस समय कैसे आ रहे के स्थान पर कहां से टपक पड़े कहता। तृप्ता को उत्तोत्तर सुर्ख होते देखकर और ढूंढने पर भी ना मिलने के अंदाज में इधर उधर घूमते और दृष्टि दौड़ाते देखकर कुशल ने जेब से माचिस निकालकर तृप्ता की ओर फेंकते हुए कहा, ये लो। तृप्ता ने माचिस दबोच ली और बोली, आप कैसे जान गए कि मैं माचिस ढूंढ रही थी? कुशल को मालूम था कि तृप्ता माचिस नहीं ढूंढ रही थी बल्कि छोटी सी बात को लेकर परेशान हो रही थी। उसने केवल उसकी घबराहट को कम करने के लिए ही माचिस फेंकी थी। फिर उसने कहा, मैं जानता था स्टोव पर ही तुम्हारी नजर नहीं जाएगी, हालांकि तुम्हें मालूम है कि माचिस वहीं पड़ी रहती है। तृप्ता ने स्टोव जलाया और चाय का पानी चढ़ा दिया और फिर स्वयं भी कुशल के निकट ही खाट पर आकर बैठ गई और पैर हिलाने लगी। कुशल ने कहा, पैर क्यों हिला रही हो? तृप्ता ने पैर हिलाने बंद की पर पास में रखा हुआ तालिया उठाकर रगड़ रगड़ कर मुंह साफ करने लगी। पसीना सूख गया था और वह फिर भी तौलिया नहीं छोड़ रही थी। कुशल ने उसे आश्वस्त और शांत करने के लिए अपने लहजे को भरसक स्वाभाविक बनाते हुए कहा, कहानी लिख रही थी क्या? उसने तृप्ता की पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम कहानियां लिखती रही तो बहुत बड़ी लेखिका हो जाओगी। तृप्ता कुशल की ओर देखकर मुस्कुराई और उसकी बुशर्ट पर रेंगती हुई एक चींटी फेंकते हुए बोली, शादी के बाद तो कुछ भी नहीं लिखा, वही पुरानी कहानी पढ़ रही थी जिसे सुनकर आपने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। और वह फिर पैर हिलाने लगी और शिकायत की मुद्रा से कुशल की ओर देखने लगी। कुशल ने महसूस किया कि कई बार बेकूफ बनाकर उतना मजा नहीं आता जितना बनकर आता है, परंतु जब तृप्ता बिल्कुल निश्चिंत हो गई कि कुशल पूरा बेवकूफ बन चुका है तो कुशल को ये अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, अजीब बात है, टांगे तो मेरी दर्द हो रही हैं और तुम हिला रही हो। फिर उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, तृप्ता जरा मेरी ओर देखो। तृप्ता ने तौलिए को ऊपर सरकाकर थोड़ी सी आंख नंगी की और तुरंत मुंह छुपाती हुई बोली, आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? डरा कैसे रहा हूं? कुशल को हल्की सी खुशी हुई। उसने तृप्ता के हाथ से तौलिया खींचते हुए कहा, देखो स्टोव शायद बुझ गया है। तृप्ता अतिरिक्त त्वरा से भाग कर स्टोव की ओर गई, जैसे दूध उफन गया हो, और फिर कुशल की ओर पीट करके स्टोव के निकट ही पटिया पर बैठ गई। सहसा कुशल को लगा कि बाथरूम का नल खुला है। वैसे बाथरूम का नल तब तक खुला रहता है जब तक कि म्युनिसिपैलिटी उसकी रगों को पानी मुहैया करा सकती है। इससे पहले गली में शोर कर रहे बच्चों की आवाज भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी। बच्चों का शोर सुनकर वह सहसा मुस्कुरा दिया। मदन जब कभी मूड में होता है तो दुकान में आने पर ग्राहकों को कभी कभी कुशल का हवाला देकर सुनाया करता है कि उसमें तभी चैन से सोया जा सकता है। मदन चुटकी बजाकर कुशल को हाफ सेट चाय का ऑर्डर देने का संकेत करते हुए अपनी बात जारी रखता है। जब रात को आप बच्चों की चिल्ल पौ को लोरी समझें और सुबह गली के नन्हे मुन्नों के सामूहिक रोदन से घड़ी के अलार्म को का काम करें। इतवार की दोपहर तो कुशल जैसे तैसे करके घर में ही बिता लेता है, परंतु इस समय बच्चों की धींगा मुश्ती ना तो लोरी का काम दे सकती थी और ना ही घड़ी के अलार्म का। उसने तृप्ता से पूछा, क्यों तृप्ता, गली के बच्चों के स्कूल कब खुल रहे हैं? तृप्ता ने मुस्कुराकर पीछे की ओर देखा। वह शायद अब तक संभल चुकी थी, या शायद उक्त प्रश्न की संभाव्यता से प्रभावित होकर उसने सोच लिया था कि कुशल की दृष्टि इतनी पैनी नहीं है जितनी कि वह समझ बैठी है। वह स्टोव से केतली उतारने लगी। उसने कुशल के लिए चाय का प्याला तैयार किया और कुशल को पकड़ाते हुए बोली, आप शेव बना लीजिए, मैं तब तक आपके कपड़े आयन कर लेती हूँ। इतना अच्छा रहे अगर आज पिक्चर चलें। मेरा ख्याल है पिक्चर तो हम मदन के लौटने तक नहीं जा सकेंगे, उसे दिल्ली जाना था, मैंने पैसे नहीं मांगे। पिक्चर जितने पैसे मेरे पास हैं। तृप्ता ने पैरों से ट्रंक को खाट के और भी नीचे धकेलते हुए कहा, कल सोम दे गया था। कुशल की लंबी नाक चाय के प्याले में टूट गई। उसने अंतिम घूंट भरने के बाद खाली प्याला तृप्ता के हाथ में थमाते हुए कहा, पहले चाय का एक और कप, बाद में कुछ और। कुशल कल से ही सोम की चर्चा में आनंद ले रहा था। कल जब सोम घर का पता जानने के लिए दुकान पर आया था तो कुशल जानबूझकर सोम के साथ स्वयं नहीं आया था, बल्कि उसने दुकान के नौकर के साथ सोम को घर भिजवा दिया था। जब सोम आया था तो कुशल एक पत्र टाइप कर रहा था। जब वह चला गया फिर भी वह टाइपराइटर पर झुक गया और टाइप करने लगा। सोम डरपोक था कि तृप्ता डरपोक थी? नहीं सयानी, सोम डरपोक था। सोम डरपोक है, सोम डरपोक रहेगा। तृप्ता डरपोक थी, तृप्ता डरपोक। कुशल ने मदन की ओर देखते हुए कागज निकाला और मेज के नीचे ले जाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। शाम को जब वह घर लौटा था तो सोम जा चुका था। भोजन के बाद जब तृप्ता दस्तरी में आम लेकर आई तो उसने जानबूझकर नहीं पूछा कि आम कौन लाया है। आम की गुठली चूसते हुए तृप्ता ने कहा था, 5 बजे तक सोम आपका इंतजार करता रहा। कुशल ने उत्तर नहीं दिया था और तृप्ता को चाय के लिए कहकर नल की ओर चला गया था। सोम कह रहा था, माँ याद कर रही थी। नल से लौटकर कुशल ने देखा तृप्ता के गालों पर आम का रस लगा था। उसने तृप्ता की बात अनसुनी कर दी और तौलिए से उसका गाल पोंछ दिया। चाय का दूसरा प्याला पीते पीते कुशल भी पसीने से भीगने लगा। उसने बुशर्ट उतारकर खाट पर रख दी और अपनी छाती के घने बालों में तिरता हुआ पसीना पोंछने लगा। काले बालों के बीच एक सफेद बाल पर उसकी दृष्टि गई तो उसने उसे उंगली पर लपेटकर जड़ समेत उखाड़ दिया और फिर छाती पर हाथ फेरने लगा। तृप्ता ने टेबल घसीटकर कुशल के आगे रख दी और उस पर शेव करने का सारा सामान टिका दिया। कुशल मुंह पर हाथ फेरते हुए आईने में अपना चेहरा देखने लगा। आप अब शेप बना लीजिए, तृप्ता ने कहा और कुशल की उतारी हुई बुशर्ट को चुहिया की दुम की तरह पकड़कर बाथरूम में ले गई। कुशल ने रेजर में ब्लेड फिट किया और देर तक मुंह पर साबुन के झाग करता रहा, परंतु उसका शेव बनाने का जी नहीं हो रहा था। उसे मालूम था कि अगर उसने शेव बना लिया तो नहाना भी पड़ेगा और नहाने के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं था। उसकी पिंडलियों में दर्द हो रहा था और देह का हर जोड़ टूट रहा था। ये सुबह से हो रहा था और यही कारण था कि वह सुबह भी बिना नहाए निकल गया था। इस अद्भुत थकावट और विचित्र दर्द से कुंद होकर आज सुबह उठते ही उसने तृप्ता से कहा था कि क्या कारण है वह कल से अतिरिक्त प्रेम कर रही है। कुशल को चेहरे पर झांक करते देख तृप्ता ने पूछा कि वह क्या सोच रहा है। यही कि कुशल ने रेजर को पानी में गीला करते हुए कहा, इस पहली को एक खाट ले आऊंगा। तृप्ता को सुझाव बड़ा फिजूल सा लगा, बोली, मैं तो बहुत कम जगह घेरती हूं, कई बातें अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती, तुम अभी बच्ची हो। कुशल ने आईने में से तृप्ता की ओर कंठनियों से देखते हुए कहा, कई बार तो तुम्हारे मुंह से दूध की बू आती है। तृप्ता कुछ देर अवाक से उसकी ओर ताकती रही, फिर बाथरूम में चली गई। जब वह स्नान करके लौटी तो कुशल तब भी चेहरे पर झाग बना रहा था। तृप्ता को देखकर उसके दिमाग में किसी छायावादी कवि की पंक्तियां तैरने लगी। उन्हें पकड़ने की बजाय वह तृप्ता को चेतावनी देने के लहजे में कहने लगा कि भविष्य में उसे सेब बनाने और स्नान करने के लिए कभी ना कहें, उसकी इच्छा होगी तो वह खुद स्नान कर लेगा। इतने में बाहर का दरवाजा खुला और किसी के आने की पदचाप सुनाई दी। तृप्ता उचक कर बाहर देखने लगी और बोली, सुब्बी है। सुब्बी नीली आंखों वाली स्लिम सी तृप्ता की हम उम्र लड़की है। उसने आंगन में आकर कुशल को देखा तो जीप निकाल कर भाग गई। सुब्बी बहुत खराब लड़की है, तृप्ता ने कहा। लड़कियां सभी खराब होती हैं, कुशल ने कहा। फिर जानना चाहता था तृप्ता की नजरों में सुब्बी क्यों खराब है। कुशल शेव बनाता रहा। तृप्ता कुछ क्षण रुक कर बोली, देखने में कितनी भोली लगती है पर मुई के पास लड़कों के खत आते हैं। आईने में कुशल का चेहरा मुस्कुराने लगा। उसने ठुड्डी पर रेजर चलाते हुए कहा, देखने में तो तुम भी बहुत भोली लगती हो। तृप्ता के चेहरे पर हवाइयां उड़ती देख उसने बात का रुख पलटा, जवान लड़की को लोग ऐसे ही बदनाम कर देते हैं। मैं भला उसकी बदनामी क्यों करूंगी, तृप्ता ने कलाइयों में पहनी चूड़ियां उंगलियों से घुमाते हुए कहा। मैंने खुद देखे हैं, उसके पास दर्शन के खत, नासपीटी उनके जवाब भी लिखती है। तुम क्या खाक कहानियां लिखती होगी। कुशल के मुंह में साबुन चला गया था। उसने तौलिए से होंठ साफ किए और बोला, खत लिखने में क्या बुराई है, कहानी लेखिका को कुछ तो उदार होना चाहिए। कुशल ने अपनी टांग से ट्रंक को थोड़ा सा सरका दिया और फिर वह ऐसे पैर हिलाने लगा जैसे ट्रंक संयोग से छू गया हो। आप कोई और मकान देखिए, तृप्ता ने कहा। चीजें रखने के लिए भी जगह नहीं, सारी रात ट्रंक मेरी पीठ पर छुपता रहता है। सोने से पहले ट्रंक को खाट के नीचे निकाल दिया करो, कुशल ने कहा। आप शेव क्यों नहीं बनाते, शेव तो बन ही जाएगी। कुशल रेजर को पानी के गिलास में घुमा रहा था जब साबुन उतर गया तो उसने कहा, सुब्बी तो अभी बिल्कुल मासूम है, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम उसके बारे में उल्टी सीधी बातें क्यों सोचती रहती हो। आपको बात का पता तो होता नहीं, और क्या, खत लिखने में मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। कुशल ने जानबूझकर तृप्ता से आंख नहीं मिलाई। तृप्ता को कुछ सोचते पा उसने कहा, खत लिखने के अलावा भी कुछ करती हो, मैं सोच नहीं सकता। तुम इस बात को क्यों भूल जाती हो कि अक्सर लड़कियां डरपोक होती हैं। आपको उसी दिन पता चलेगा जब उसके भागने की खबर मिलेगी। अगर सुब्बी ऐसी लड़की है जो तुम उसके साथ संबंध क्यों रखते हो। मैं तो उसे समझाती रहती हूँ। क्या समझाती रहती हो, कुशल के गाल पर एक कट आ गया। यही कि दर्शन लिखता है तो वह उसका जवाब क्यों देती है। कुशल ने तौलिए से गाल साफ किया, दूसरे ही क्षण खून का एक और कतरा चमकने लगा। तृप्ता भाग कर डेटॉल ले आई, रुई से उसके गाल पर लगाते हुए बोली, मैंने उसे ये भी समझाया है कि वे दर्शन से कहें कि जब तक वह उसके पिछले सारे खत नहीं लौटाएगा वह उससे बात नहीं करेगी। कुशल ने कहकहा लगाया और बोला, तुम जरूर उसे फंसाओगी। फंसाऊंगी कैसे? उससे ना तो खतों को नष्ट करते ही बनेगा और संभाल के रखेगी तो किसी भी वक्त राज भी खुल सकता है। कुशल ने कहा, फाड़ में जाए सुब्बी और उसके खत। अगर आज आप पिक्चर लेके नहीं जाएंगे ना तो मैं आपके लिए कुछ खरीद कर लाऊंगी। इतना प्यार ना किया करो तिप्पो। कुशल ने तृप्ता की कलाई पकड़ ली और उसी रुई से तृप्ता के गाल पर घिसते हुए बोला, पहले तो तुम इतनी बस बस। तृप्ता ने बात बीच में काट दी, बताइए आपके लिए क्या लाऊं? मेरे लिए खाट ले आओ। कुशल की पिंडलियों में फिर जोरों का दर्द होने लगा था। तृप्ता जैसे प्रेम के अतिरेक में मचल उठी, गिनाने लगी, नहीं खाट नहीं, एक नई बुशर्ट, एक आपकी प्रिय पुस्तक, एक टूथब्रश और, उसने कुछ सोचते हुए कहा, और टॉफियां लॉलीपॉप। तुम सिर्फ टॉफियां लॉलीपॉप ले आओ। नहीं, मैं सब चीजें लाऊंगी। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 5 रुपए, तृप्ता ने थूक निकलते हुए कहा। 5 रुपए में इतना सब कुछ कैसे आएगा? तुम्हारे पास जरूर और पैसे होंगे। कसम से इतने ही हैं, तृप्ता ने कहा। आप सोम से पूछ लीजिए, वह 5 रुपए ही देके गया था। कुशल शेव बना चुका था परंतु नहाना नहीं चाहता था, बोला, भला तुमने सोम से पैसे क्यों लिए? तृप्ता का चेहरा छिले आलू की तरह हो गया, बोली, आपने मना किया होता तो कभी ना लेती। पैसे लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। कुशल ने कहा, क्यों नाहक उसका खर्च करवाया करती हो? उस दिन दुकान पर आया तो बहुत से फल लेते आया, झूठ बोलकर उसे खुशी हुई। आपने बताया क्यों नहीं? भला इसमें बताने की क्या बात थी? और फिर तुमने भी तो नहीं बताया कि वह आज पैसे दे गया था। बता तो दिया है। खैर, कुशल ने बात समाप्त करते हुए टोका दिया, सोम तुम्हारा क्या लगता है? बुआ का लड़का है, आपको कई बार बताया है? उसने चिढ़कर कहा। मैं हर बार भूल जाता हूँ, कुशल ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे ब्याह के समय सबसे अलग थलग खड़ा जिस ढंग से रो रहा था उससे तो मैंने अनुमान लगाया कि वे जरूर मेरा रकीब होगा। रकीब का माने क्या होता है? तृप्ता ने तुरंत पूछा। अरबी में बुआ के लड़के को रकीब कहते हैं, कुशल ने कहा और कंधे पर तौलिया लटकाकर बाथरूम में चला गया। कुशल ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया तो उसे खाट खसीटने की आवाज आई। उसने महसूस किया कि नहाने से पहले सिगरेट मजा दे सकती है। वे खुद सिगरेट उठा लेता मगर जब उसे चोर हाथों से ताला लगाने की आवाज आई तो उसने खुद जाना उचित नहीं समझा। उसने तृप्ता को आवाज दी कि वह सिगरेट दे जाए। तृप्ता ने दूसरे ही क्षण छुरोके से सिगरेट और माचिस पकड़ा दी। सिगरेट पकड़ते हुए उसके मन में तृप्ता के प्रति प्यार उमड़ने लगा। उसे लग रहा था कि वह अपने मनोरंजन के लिए तृप्ता को परेशान कर रहा है। यह मनोरंजन का साधन भी अचानक उसके हाथ लग गया था। उस दिन एक पुस्तक ढूंढते ढूंढते वे तृप्ता के ट्रंक की भी छानबीन न करता तो शायद इससे वंचित रहता। पुस्तक न मिलने पर उसने महसूस किया था कि ट्रंक में वक्त काटने के लिए बहुत सी रोचक सामग्री पड़ी रहे। ट्रंक में कपड़ों के नीचे एक साधारण सा पर्स पड़ा था। पर्स में मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, तुड़ी मुड़ी सी एक दो तस्वीरें जिसमें युवक का भेस में तृप्ता का एक चित्र था, माला से बिखरे हुए कुछ मोती, एक मैला पिक्चर पोस्टकार्ड, एक सेंट की लगभग खाली शीशी बहुत हिफाजत से रखी हुई थी। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट देखकर कुशल शिथिल हो गया था। उसे लग रहा था जैसे अनजाने में उससे चूजा विवाह हो गया है। सर्टिफिकेट के हिसाब से तृप्ता की उम्र कुशल से 9 साल कम बैठती थी। उसने सर्टिफिकेट में तृप्ता के अंक ना पढ़े थे कि वापस पर्स में रख दिया। ट्रंक में सबसे नीचे अखबार का एक बड़ा कागज बिछा था, मगर साफ पता चलता था कि कागज के नीचे कुछ है, क्योंकि कागज एक जगह ऐसे उठा हुआ था जैसे उसके नीचे एक बड़ा मेढक पड़ा हो। कुशल ने बड़ी एहतियात से वह मेढक निकाला। कागजों का एक खस्ता पुलिंदा था जिसमें दोनों के खत थे, सोम के भी और तृप्ता के भी, जो शायद तृप्ता ने चालाकी से वापस ले लिए थे या सोम ने सराफत से लौटा दिए थे। खत पढ़ते पढ़ते कुशल इतनी देर तक हंसता रहा था। तृप्ता ने वही बातें लिखी थी जो कभी कभी भावुक होकर उससे भी किया करती है। सोम के खत पढ़कर वह हंसी से लोटपोट हो गया था। सोम की शक्ल देखकर तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि वह इतना भावुक हो सकता है और हिज्जो की इतनी गलतियां कर सकता है। इस बार जब सोम आया था तो उसने थोड़ी बहुत मुच्छे भी बढ़ाई हुई थी। कुशल को ये बात बड़ी अजीब लगी कि मुच्छे बढ़ा कर भी आदमी भावुक रह सकता है, मुच्छो वाला भावुक। शाम को जब तृप्ता बाजार से लौटी तो उसने कहा, तृप्ता तुम 30 बरस की कब होगी? क्यों, आप मुझे बूढ़ी देखना चाहते हो? नहीं, बूढ़ी नहीं, लेकिन बच्ची भी नहीं। काश तुम 30 साल की होती, कुशल हंस पड़ा था। कुशल गुशल खाने से लौटा तो कमरे का रूप एकदम बदला हुआ था। खाट जो इससे पहले कमरे के ठीक बीच में पड़ी थी, अब दूसरे कमरे में खुलने वाले दरवाजे के साथ टिका दी गई थी और उस पर अंगूरी रंग की एक नई शीट बिछा दी। खाट के साथ ही दीवार की बगल में तृप्ता का ट्रंक पड़ा था, जिस पर उसी के द्वारा कढ़ा हुआ एक सुंदर मेजपोश पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर बैठी तृप्ता क्रोशिये से कुछ बिन रही थी। उसने आंखों में काजल की गहरी लकीरें खींच ली थी। होंठ लिपस्टिक के हल्के से स्पर्श से किरमिजी हो गए थे। कुशल ने यह परिवर्तन देखा तो मुस्कुरा दिया। उससे मुस्कुराते देख तृप्ता ने पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तृप्ता क्रोशिये से पीठ खुजलाने लगी, जिससे उसका ब्लाउज कंधे के नीचे गुब्बारे सा फूल गया था। कुशल के मन में क्षण भर के लिए विचार आया कि वह बाहर का दरवाजा बंद करके आए, परंतु स्नान करने से उसकी पिंडलियों का थोड़ा सा सुकून मिला था, जिसे वह कुछ देर और कायम रखना चाहता था। उसने सर पर कंघी फेरते हुए कहा, तुम कहती हो तो नहीं मुस्कुराता, आप कुछ सोच रहे हैं? तृप्ता क्रोशिये पर दृष्टि गड़ाकर बोली, क्या सोच रहे हैं? कुशल ने कुछ सोचने की कोशिश की और कल्पित प्रेमिका का पुराना किस्सा लेख बैठा। बोला, दरअसल मुझे शीला याद आ रही थी। जब मैं हंसता था तो वह भी तुम्हारी तरह टोक देती थी। जब मैं सिगरेट पीता था वह भी मुझसे दूर हो जाकर बैठ जाती थी, और जब कभी उसके घर जाता तो नौकर को भेजकर सिगरेट मंगवा देती। अजीब लड़की थी शीला। कुशल ने सिगरेट सुलगाई और खाली पैकेट नाटकीय अंदाज में दूर फेंक दिया। तृप्ता ने क्रोशिये से आंखें नहीं उठाई। कुशल ने तृप्ता को लक्षित करके धुएं का एक गहरा बादल उसकी ओर फेंका। उसे आशा थी कि ताजी लिपस्टिक पर थोड़ा सा धुआं जरूर जम जाएगा। अपनी बात का प्रभाव ना होते देख उसने बात आगे बढ़ाई कि कैसे वह शीला के साथ पिकनिक पे जाया करता था और बस बस, मैं और अब नहीं सुनूंगी। तृप्ता ने क्रोशिये से आंखें उठाकर कुशल की ओर अविश्वास पूर्वक देखते हुए कहा, आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? कुशल ने एक लंबा सा कश लिया और बोला, अच्छा अब तुम मुझे बेवकूफ बनाओ। इस बार उसने अपने नाक से धुआं छोड़ा। तृप्ता को चुप देखकर उसने कहा, बनाओ भी क्या? यही बेवकूफ, उसने तृप्ता की ओर सरकते हुए कहा, तुम शायद समझती हो कि मैं पहले ही बेवकूफ हूँ। बेवकूफ तो आप मुझे बना रहे हैं, तृप्ता का चेहरा सुर्ख हो गया था और कड़वाहट पी जाने से उसकी रुआसी सी होकर उसने बोला, रकीब के माने क्या होता है? बुआ का लड़का, कुशल ने सिगरेट के टुकड़े पैर से मसल दिया। कहानी लेखिका होकर इसका भी अर्थ नहीं पता। कुशल को मालूम था कि अब वह कहानी लेखिका का लबादा ओढ़ने के लिए विवश है। आपको मेरा कुछ पसंद भी है? तृप्ता की आंखों में पानी चमकने लगा था। वह चाहता तो आसानी से तृप्ता को रुला सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। इधर उधर सिगरेट का कोई बड़ा टुकड़ा ढूंढते हुए उसने निहायत सादगी से कहा, निश्चित होकर मुझे तुम्हारी रचनाएं पसंद आ सकती थी, लेकिन तुम सुनाओ तब तो। तृप्ता ने कुशल की ओर नहीं देखा, उसकी बात भी अनसुनी कर दी और घुटनों में सर देकर बैठ गई। पहले तो कुशल के जी में आया कि तृप्ता को चुप करवाया जाए और उसी बहाने प्यार भी किया जाए, परंतु उसने महसूस किया कि बिना सिगरेट के कष्ट खींचे प्यार नहीं किया जा सकता। भावुक तो वो बिल्कुल नहीं हुआ जा सकता। कुशल जानता है कि तृप्ता भावुकता रहित प्यार को स्वीकार नहीं करेगी। उसने घुटनों पर झुकी तृप्ता को और देखा और पाँव में चप्पल पहनने लगा। तृप्ता के झुक कर बैठने से उसकी पीठ भरी पूरी और मांसल लग रही थी। सफेद वायल ब्लाउज में से उसकी ब्रेसियर की कसी हुई तनिया नजर आ रही थी। तृप्ता ने कुशल को चप्पल घसीटते हुए बाहर जाते देखा तो वह सिसकियां भरने लगी। कुशल के मन में तृप्ता के प्रति करुणा उमड़ रही थी। उसे दुकान से इस प्रकार उठ आने में कोई दुख नजर नहीं आ रही थी। उसे मालूम है कि अब वह तृप्ता को जितना भी मनाने का प्रयत्न करेगा वह उसी मात्रा में रूठती चली जाएगी। मनाने के इस लंबे सिलसिले से तो दुकान पर दिन भर टाइप करना आसान है, कुशल ने सोचा और पनवाड़ी से सिगरेट का एक पैकेट लिया। वह लौटा तो भरे टब में पानी गिरने की वही चिरपरिचित आवाज सुनाई दी। उसे लगा जैसे सहसा किसी ने देर से उसके कानों में रखी हुई रुई निकाल कर फेंकी हो, या फिर वह बरसों पुराने माहौल में फिर से लौट आया हो। उसने देखा तृप्ता खाट पर औंधी लेटी थी और उसने अपना मुंह तकिए में छिपा रखा था। स्टोव पर पानी उबल रहा था और जले हुए कागज के पुर्जे खुश और भटके पत्तों की तरह कमरे में इधर उधर उड़ रहे थे। कुछ कागज स्टोव पर रखे पानी में तैर रहे थे। कुशल ने बड़ी एहतियात से एक श्या कागज उठाया और तृप्ता के पीठ पर पापड़ की तरह चूर्ण करते हुए बोला, कहानी जला डाली क्या? उठो, ब्याहता स्त्रियां बच्चों की तरह नहीं रोया करती। तृप्ता जो धीमे धीमे सुबक रही थी फफक कर रोने लगी और उसकी हिचकी बंद गई। कुशल खाट के निकट पड़े ट्रंक पर बैठ गया और खुले ताले से खेलने लगा जो मेजपोश पर पेपर वेट सा लग रहा था। सिगरेट सुलगाकर भी वह तृप्ता को चुप कराने का साहस ना बटोर सका। उसे लग रहा था तृप्ता का रोना बिल्कुल जायज है। गाथा में अभी आप सुन रहे थे रविंद्र कालिया के द्वारा लिखी गई कहानी 9 वर्ष छोटी पत्नी, जिसे गाथा में आपके लिए प्रस्तुत किया है विनीता श्रीवास्तव ने।